समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिसका आपसे है सरोकार। 30 मिनट के इस कार्यक्रम में हम देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी रहेगी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार।
Hello and good afternoon, Vishal. Vishal, the month of January is coming to an end in a few days, but this month, I can say, makes us proud of our nationalistic feeling without any doubt, isn't it?
Yes, बिल्कुल ठीक कहा आपने.
Patriotism rises in our hearts and India's triumph shines bright as the calendar marks 26th of January, the Republic Day, which embodies the spirit of unity, freedom and democracy, reminding us of our promise to uphold these values together in this beautiful journey as an independent sovereign nation. But officially, the celebration lasts for 4 days, culminating with the Beating the Retreat ceremony, which is going to be held on the 29th of January, featuring military bands performing at Vijay Chowk, which marks the formal end of the festivities. We are still looking forward to it. Akashwani will surely be giving you a live commentary of the ceremony tomorrow. But right now, let us update you all on the news making headlines at the moment.
जी, अब तक के प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, कहा पूर्वी भारत देश का विकास इंजन है और ओडिशा इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Political parties intensify campaign for assembly elections in Delhi.
प्रयागराज में कल मौनी अमावस्या के मद्देनजर महाकुंभ मेले में व्यापक प्रबंध किए गए।
5 people killed and over 40 injured as wooden structure collapses in Baghpat in Uttar Pradesh.
बांग्लादेश में रेलवे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ट्रेन सेवाएं बाधित।
And 38th national games to begin today at Dehradun in Uttarakhand. And now it's time for our segment Dateline India, where we bring you the latest updates from across the nation and the world. And today we focus on a growing trend that's taking the agriculture world by storm, and that is organic farming. If the farmer is rich, then so is the nation.
अनुजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश की प्रगति में देश के किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और अगर हमारे देश के किसान समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो ये बताता है कि सैन्य और कृषि दोनों क्षेत्रों का राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है।
बट यस, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इट्स अ वे ऑफ इंश्योरिंग दैट नेचर रिमेन्स क्लीन, रिच एंड फुल ऑफ लाइफ। इफ यू हैव एवर विजिटेड एन ऑर्गेनिक फार्म, यू विल नोटिस अ कॉन्स्टेंट बज ऑफ लाइफ, एनिमल्स, birds and insects in action. This is because organic farming avoids harmful pesticides and uses fertilizers minimally. In fact, studies show that there is a 30% increase in the diversity of wildlife and plants around ecological production fields compared to conventional farms.
कोविड महामारी ने जैविक खाद्य पदार्थों के प्रति हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अब लोग अपनी सेहत और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की ओर रुख कर रहे हैं और इसीलिए जैविक भोजन को अब एक स्वस्थ और सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
एब्सोल्युटली, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड इज अ हेल्दियर चॉइस दीज डेज। इट्स पैक्ड विद हायर लेवल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द बेस्ट पार्ट, नो हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। मोर ओवर, दीज प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस।
जी, और जैसे आपने पोषक तत्वों की बात की, जो प्राकृतिक खेती के कई लाभ भी हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि टॉक्सिक फ्री फूड्स होते हैं
जी हाँ।
और टॉक्सिन्स नहीं होते, इसमें कोई विषैले पदार्थ नहीं होते, और एक स्वस्थ जीवन शैली अगर हम चाहते हैं तो हमें इन ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ बढ़ना ही होगा। और साथ ही साथ जो ये किसान फल और सब्जियां प्राकृतिक तरीके से जैविक खेती के जरिए जो उगाई जाती हैं, आपने कहा भी कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, और खासकर महामारी के बाद जो है लोगों की सोच में बहुत ही बदलाव आया है।
वेरी मच विशाल, एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ 2021, इंडिया इज अमंग द टॉप नेशंस प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ अराउंड 2.3 million hectares of land under organic cultivation. India is home to 30% of the world's organic farmers, and this is a huge milestone for the country and proves that organic farming is gaining momentum.
Ji, koi bahut choti uplabdhi nahi, kafi badi uplabdhi hai, kyunki duniya bhar ke 187 deshon mein jaivik kheti ki ja rahi hai. Duniya bhar mein 30 lakh se adhik kisanon dwara lagbhag 72.3 million hectare krishi bhumi ko jaivik tarike se prabandhit kiya ja raha hai. और ये हमें अपने आप में सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना विशाल है।
ऑस्ट्रेलिया लीड्स द वर्ल्ड विद द मोस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड, दैट इज 35.69 मिलियन हेक्टेयर्स, फॉलोड बाय अर्जेंटीना एंड स्पेन। डिस्पाइट द ग्लोबल पिक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज स्टिल एट अ नेसेंट स्टेज।
जी अनुजा, आपने FIBL सर्वे 2019 की बात की, और 2019 का जो ये सर्वेक्षण हुआ था FIBL का, वो ये बताता है कि भारत में कुल कृषि भूमि का केवल 2% ही जैविक खेती के अंतर्गत था। हालांकि कुछ राज्य इस तस्वीर को बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी इस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैविक खेती के लिए के तहत 0.76 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि के साथ ये शीर्ष पर है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो 3 राज्य शीर्ष पर हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, जो कि भारत की जो कुल जो जैविक भूमि क्षेत्र, जैविक खेती का जो भूमि क्षेत्र है, उसके आधे से अधिक जो है ये शीर्ष पर है।
जे, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द 1960s, फार्मर्स इन इंडिया बिगैन यूजिंग हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। व्हाइल दिस इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी एंड हायर प्रोडक्टिविटी, इट ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज हैज मेड सॉइल इनफर्टाइल, एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैव मेड फूड हार्मफुल टू कंज्यूम, एंड दैट इज व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया नाउ।
और जैविक खेती भारत में समय की मांग क्यों है, इसके कई कारण हैं।
Yes, if we talk about the first thing is health and safety. The excessive use of chemicals in conventional farming can lead to serious health risks, including cancer and infertility. Organic farming prioritizes the safety of both humans and animals.
और पर्यावरणीय स्थिरता, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जैविक खेती का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ और हरित पर्यावरण बनाए रखने के लिए जैविक खेती बहुत आवश्यक है। इसमें प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, और ये पारिस्थितिक कि तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले रसायनों से भी बचाती है।
नो डाउट द ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री इज एक्सपैंडिंग रैपिडली, एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज बिकमिंग अ हाईली प्रॉफिटेबल सेक्टर फॉर फार्मर्स नाउ।
सतत तरीके से खाद्य सुरक्षा, भारत की बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियां, जैसे दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए जैविक कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अनुजा, एक सबसे बड़ा एक यहां पर एक बात यह भी है कि इससे जैविक खेती से जो किसानों की आय भी बहुत जबरदस्त वृद्धि हो रही है।
जी, व्हाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस विशाल, द ट्रेंड इज ग्रोइंग, एंड इंडिया इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स ओवर 1.3 मिलियन विद मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र लीडिंग द वे। डिस्पाइट द चैलेंजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग्स ग्रोथ इज एम्बिशियस, नॉट जस्ट फॉर फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। मीनवाइल, त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ब्रिंग 6,500 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग by the financial year 2026-27, and our Agartala correspondent has more on this, and he has a detailed report.
At present in Tripura, over 17,000 farmers are practicing organic farming on 18,161 hectares of land. Director of the Tripura State Organic Farming Development Authority Mission, Rajib Debbarma, while talking to Akashvani News, informed that Tripura possesses a significant potential for organic farming, attributing to the mission organic value chain introduced by the Ministry of Development of Northeastern Region. Mr. Debbarma said this project has been operational in the state since 2016. Through this project, farmers practicing traditional farming in hilly areas have been encouraged to focus on organic farming to secure better prices for their produce. Mr. Deb Burma said,
अभी तक हम लोग ने 20,000 हेक्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने फेज वन फेज टू फेज थ्री में हमको जो ऑर्गेनिक एरिया है हमने उसको डेवलप किया.
द प्राइम रीजन बिहाइंड द राइज इन नंबर इज ओइंग टू द बेटर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रीमियम प्राइसिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. सिमिलरली द एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम 2,000 हेक्टर्स इन 2017 टू 18,161 हेक्टर्स इन 2023. लाइकवाइज द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ब्रिंग 6,500 हेक्टर्स ऑफ लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026-27.
अभी 2024-25 से हम लोग 6,500 हेक्टर और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्टीवेशन में लाएंगे और इसके लिए ऑलरेडी हम लोग 40 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग तैयार किया है. जो फेज फोर जो आने वाला है 24-25 से उसके लिए हम लोग और 13 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग तैयारी करेंगे.
इन रिसेंट पास्ट ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस गुड्स इन द स्टेट हैव सीन स्ट्रॉन्ग डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट्स विद हायर प्राइसेस. हाउएवर प्रॉपर सर्टिफिकेशन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट्स अब्रॉड. सो फार 37 टन्स ऑफ एरोमेटिक राइस, 13 टन्स ऑफ जिंजर, 31 टन्स ऑफ टर्मरिक एंड 362 टन्स ऑफ पाइनएप्पल ग्रोन ऑर्गेनिकली in Tripura have been sold outside the state. Union Home Minister Amit Shah, during his visit to inaugurate the two-day plenary session of the North Eastern Council, had emphasized the importance of organic farming in the region to fully harness its potential. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
जी, तो त्रिपुरा में जैविक खेती को लेकर के बहुत ही अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं. हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आपने सुनी. और जैविक खेती अगर कहें तो एक चलन, जिसे कहें एक ट्रेंड से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है. ये एक स्वस्थ अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए हमारी एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है. और ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि हम जैविक खेती को समर्थन करना जारी रखें. जैविक खेती को प्रोत्साहन न केवल बेहतर भोजन के लिए बल्कि एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी ज़रूरी है. हर विकल्प मायने रखता है और जैविक चुनने का मतलब है एक बेहतर भविष्य का चुनाव.
ऑफ कोर्स विशाल, सो लेट्स कंटिन्यू सपोर्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड मेक द चॉइस फॉर ऑर्गेनिक फूड अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स. आफ्टर ऑल एवरी स्मॉल चेंज काउंट्स इन शेपिंग अ बेटर फ्यूचर.
और अब चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज उनके पास हमारे श्रोताओं के लिए क्या विशेष जानकारियां हैं.
Yes, and first we take you all to Gangtok. In Sikkim, Sonam Lochar, a significant festival of the Tamang community was celebrated with great fervor at the state level. Sonam Lochar celebration held at Jothar Stadium in Soreng yesterday. The event witnessed the presence of Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang. We have a report.
Organized by the Tamang Sonam Lochar Celebration Committee, the festival began with prayers at the Chorten, puja at the Chashum, and visit to Tamang Dim, Bonbo, Tamba, and traditional Tamang stalls. The Chief Minister hoisted the Tamang flag, marking the pre-celebration of Sonam Lochar, which officially falls on January 30, 2025. In his address, the Chief Minister emphasized cultural unity and community participation, arguing everyone to preserve and promote local tradition under the vision of Sunaulo Sikkim, Samriddhi Sikkim, Samartha Sikkim. He also announced plan for parking facilities and artificial turf stadium and a Tamang Cultural and Research Center in Soreng. MLA Aditya Gole expressed gratitude for Soreng district status and highlighted the need for sports and cultural infrastructure. Traditional performances from Sikkim, Nepal and Darjeeling added vibrancy to the celebration. The event concluded with felicitation of Tamang achievers and a call to preserve the community heritage. Dilram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
Devbhumi, Uttarakhand. जी, उत्तराखंड में आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हो रहे हैं. कल ही उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, यूसीसी लागू करने वाला. और अब जो है राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 28 जनवरी से. ये भी एक प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है. उत्तराखंड में कल से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई. इसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत नागरिक कानूनों का मानकीकरण करना है. यूसीसी से जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी राज्य संवाददाता.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में समान नागरिक संहिता यूसीसी का पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी के अंतर्गत राज्य में धर्म की परवाह किए बिना अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम होंगे। विवाह तथा लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। देहरादून में समान नागरिक संहिता लागू करने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कानूनी भेदभाव को समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि ये कानून लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही युवतियों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि ये कानून प्रदेश के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।
तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 फरवरी 2022 को भाजपा ने देवतुल्य जनता के समक्ष ये वादा किया था कि सरकार के आने पर प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देंगे, और आज प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाना जनता के समक्ष लिए गए संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सरकार की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है।
और चुनाव में हमने संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे, और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया। यूसीसी के लिए ड्राफ्ट एक कमेटी का गठन हुआ, उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया, ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया और उस कमेटी ने अपना काम किया।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से प्रदेशवासियों में उत्साह का माहौल है और सभी ने यूसीसी का स्वागत किया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
And now we take you all to Chennai, where the Indian Institute of Technology Madras will organize Asia's first international Hyperloop competition from 21st to the 25th of February this year. We have a report on this.
Indian Institute of Technology Madras will organize Asia's first international Hyperloop competition from 21st to 25th February this year. IIT Madras, IITM Pravathak and SAE India, the Ministry of Railways, will jointly conduct the competition. Around 400 participants competing in different categories. Hyperloop is the fifth mode of transportation, a high-speed train that travels in a near vacuum tube. The reduced air resistance allows the capsule inside the tube to reach speeds of more than 1000 km per hour. Mr. Elon Musk, who heads SpaceX and Tesla, proposed the idea of Hyperloop to the world in 2013 through a white paper, Hyperloop Alpha. By bringing together key Hyperloop stakeholders from the US, Europe, Turkey and other parts of the world, the competition aims to accelerate adoption of sustainable and ultra-fast transit systems. It will provide a global platform for students, researchers and industry leaders to exchange ideas, expertise and inspire the next generation of engineers and designers who can envision and build the future of mobility. The Global Hyperloop Competition exemplifies our mission to foster multidisciplinary collaboration and innovation in India. This is Blissy from Akashvani, Chennai.
और अब जानकारी खेलों की। पांच मैचों की श्रृंखला के तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है।
And if we talk about the business news for the day, benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 0.5%, led by banking and financial services sectors following RBI's announcement of measures to boost liquidity in the banking system. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex rose 535 points or 0.71% to close at 75,901. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 gained 128 points or 0.56% to settle at 22,957. And in the Indian bullion market, the 24 carat gold was trading up at 80,340 for 10 grams, while silver 999 is also trading up at 90,750 per kilogram when reports last came in. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember Punjab Kesari and one of the tallest Indian independence leader, Lala Lajpat Rai, who was born on 28 January 1865 in Ludhiana district of Punjab.
Popularly known as Punjab Kesari, he was one of the three members of the Lal, Bal and Thal triumvirate, which also included Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. The trio laid the foundation of the assertive nationalism in the aftermath of the partition of Bengal in 1905 and launched the Swadeshi movement. Under it, British goods and services were boycotted with the aim of crippling the empire economically and regenerating Indian goods and culture. Mahatma Gandhi later built upon the democratic struggle during the non-cooperation movement of the 1920s.
Though the two great national leaders, Mahatma Gandhi and Lala Lajpat Rai, had different philosophies in fighting the British imperialism, the two had great respect for each other too. Mahatma Gandhi was much disturbed by the death of Lala Lajpat Rai on 18th November 1928. In the Young India edition of November 1928, he wrote,
"Men like Lalaji cannot die, so long as the sun shines in the Indian sky. Lalaji means an institution. From his youth, he made of his country's service a religion. His nationalism was international, hence his hold on the European mind. He claimed a large circle of friends in Europe and America. They loved him because they knew him. It is impossible to think of a single public movement in which Lalaji was not to be found."
और अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन हस्तियों की, उन व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था. और सबसे पहला नाम हमारे सामने है K.M. Kariyappa.
जी हाँ, फील्ड मार्शल K.M. Kariyappa, who is having his birth anniversary today. The first Indian Commander-in-Chief of the Indian Army after India became independent. Field Marshal Kariyappa's journey is a story of patriotism and commitment. His efforts laid the groundwork for a robust military system that prioritized discipline and modernization in India. Known for his impartiality and focus on unity, he believed in the motto of serving the nation above all. In January 1949, Kariyappa was named the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Army, replacing the British commanding general, Sir Roy Bushar. As army chief, Kariyappa had a mandate to transform the army left by the British into a national military force. And in 1949, the US military award of chief commander of the Legion of Merit was given to him by President Truman. His visionary leadership during the formative years of India's independence was instrumental in establishing a disciplined modern military. K.M. Kariyappa's unwavering dedication to the nation, unity and professionalism continues to inspire generations. His life and values remind us of the importance of selfless service and integrity in nation building.
जी, और आज के दिन जन्म हुआ था पंडित जसराज का, जाने माने शास्त्रीय गायक. पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से था. पंडित जसराज ने संगीत की दुनिया में 80 वर्ष से अधिक बिताए और कई पुरस्कार भी इनको मिले. शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय स्वरों के उनके प्रदर्शनों को एल्बम और फिल्म साउंडट्रैक के रूप में भी तैयार किया गया. पंडित जसराज मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं, जो संगीत का एक स्कूल है और ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए भी जाना जाता है. पंडित जसराज ने ख्याल गायन में कुछ लचीलेपन के साथ ठुमरी और हल्की शैलियों के तत्वों को भी जोड़ने का प्रयास किया.
Right, he credits the vocalist Begum Akhtar as inspiring him to take up classical music. He would practice singing close to 14 hours a day. In 1952, when he was 22, he performed his first stage concert as a vocalist in the court of King Tribhuvan Bir Bikram Shah of Nepal in Kathmandu. And before becoming a stage performer, Jasraj worked as a performing artist on radio for several years. And if we talk about the awards and honors he received, it is Padma Shri, Sangeet Natak Academy Award, Padma Bhushan and also Padma Vibhushan. Now let's hear a rendition in his voice.
Kahe sune ki जाओ उतर जाओ।
आज पुण्यतिथि है भारतीय अभिनेता, प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की। इन्होंने हिंदी की पहली रंगीन फिल्म झांसी की रानी बनाई थी और पारसी थिएटर शैली का जो एक उन्होंने शुरुआत की भारतीय हिंदी फिल्मों में, उसको आज भी याद किया जाता है। सन 1980 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभिनय की अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो अभिनय की जो बारीकियाँ सीखी वो अपने भाई रुस्तम की नाटक कंपनी सुबोध थिएटरिकल कंपनी से सीखी और जिसमें इन्होंने काम भी किया, और वहीं इन्होंने संवाद को गंभीर और सधी आवाज में बोलने की कला भी सीखी, जो बाद में आगे चलकर इनकी विशेषता भी बन गई। और इन्होंने कई नाटकों में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई। हेमलेट और द सोल ऑफ डॉटर इनके लोकप्रिय नाटक थे जिसमें इन्होंने अभिनय किया, और हिंदी फिल्मों में तो इन्होंने एक से एक बढ़कर बेहतरीन अभिनय किया।
राइट विशाल, ही लॉन्च द मिनर्वा मूवी टोन इन 1936 एंड मोदीज ग्रेटेस्ट फिल्म वॉज सिकंदर इन द ईयर 1941 विच इमोर्टलाइज्ड हिम एज वेल एज पृथ्वीराज कपूर प्लेइंग द टाइटल रोल एंड दिस एपिक फिल्म वॉज सेट ऑन अलेक्जेंडर द ग्रेट। द रिलीज ऑफ द फिल्म कोइंसाइडेड विद वर्ल्ड वॉर सेकंड एट इट्स पीक एंड इन इंडिया द पोलिटिकल एटमोसफियर वॉज टेंस फॉलोइंग गांधी जीज कॉल टू सिविल डिसोबीडियंस, सो सिकंदर फर्दर अराउज पेट्रियाटिक फीलिंग्स एंड नेशनल सेंटिमेंट during that time. We have a dialogue from his movie.
Rajdoot, apne badshah se jaakar kaho ki aaj tak usne Hindustan ki talwaren dekhi hain, ab wo Hindustan ke talwar baad dekhega.
Mere badshah ne maharaj ki taraf dosti ka haath badhaya hai.
Ye dosti ka haath nahi, ek fateh ka haath hai. Wo chahta hai ki hum ek gulam ki tarah uske samne ghutne tek kar uske haath ko chume aur wo ek malik ki tarah hamari peeth ko thapthapaye.
गुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा।
जी, ये बुलंद आवाज सोहराब मोदी की और जाने माने फिल्म अभिनेता भारतीय फिल्मों के, हिंदी फिल्मों के। और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार ओमकार प्रसाद नैयर, ओपी नैयर।
यस विशाल, टुडे वी आर रिमेम्बरिंग द कंपोजर हु मेंटर्ड सम लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर्स। ओपी नैयर पास्ड अवे 18 इयर्स अगो ऑन दिस डेट इन 2007।
जी, अपने धुनों के जादू से आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे कई पार्श्व गायकों और पार्श्व गायिकाओं को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने वाले संगीतकार ओपी नैयर के संगीतबद्ध गीत आज भी लोकप्रिय हैं।
ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिदमिक एंड मेलोडियस music directors of the Hindi film industry. He won the 1958 Filmfare Award for Best Music Director for Naya Daur. Nayar worked extensively with singers like Geeta Dutt, Asha Bhosle, Mohammad Rafi and all these singers, and we have made a medley for you all of his melodious songs here.
Ye dekh ke dil jhuma le pyar ne angdaai दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले लिए मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर सैया घायल की तूने मोरा जिगर
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार
मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार।
And Vishal, do you know about this trivia that Nayar remains the only composer who reached the top without recording a single song in the voice of Lata Mangeshkar? Lata Mangeshkar used to be the topmost singer in those times. And his songs really captivates our hearts and leave you longing for more. So we just relive the magic of his mesmerizing composition right now. And today we also pay tribute to Hasmukh Dheeraj Lal Sankalia, an Indian Sanskrit scholar and archaeologist specializing in proto and ancient Indian history. He is considered to have pioneered archaeological excavation techniques in India, with several significant discoveries from the prehistoric period to his credit. Sankalia received the Ranjit Ram Suvarna Chandrak Award in 1966 and also received a Padma Bhushan in the year 1974.
जी, और अब कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो रहा है. उम्मीद करते हैं कि आज का परिक्रमा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा. तो इजाजत दीजिए विशाल और अनुजा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की.
राइट, नमस्कार.
नमस्कार.